जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, तई गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। तो श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में 7 दिन से हम महाराज जी से कथा सुन रहे हैं, और सारी कथा सुन के अभी हम जहाँ उनका जन्म हुआ है योगपीठ वहाँ पहुँचे हैं, तो पूरा हमारा मूड एकदम तैयार है गौरांग महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। और इसीलिए फिर हमारे बीच आज उपस्थित है श्रीमान विश्वरूप प्रभु, इनको हम विनंती करेंगे कि हमको मार्गदर्शन दे योगपीठ इस जगह के बारे में, इसका क्या महत्व है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो 3 बार हम पारंपरिक पद्धति से इनका स्वागत करेंगे हमारे बीच में चित्रागृह।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लोग एक बार हृदय के अंदर से कोने से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका मैं बहुत ऋणी हूँ कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया इतने सुंदर और दिव्य स्थान में जिसका नाम योगपीठ है। आवाज को बढ़ाओ, हरे कृष्णा। जिन लोगों को सुनाई नहीं अभी पढ़ता होगा तो वो लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा कम करने वो थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो श्री गौरांग महाप्रभु के इस पवित्र धाम में जो हम यात्रा कर रहे हैं उसके अंतिम चरण में हम आज आ गए हैं, और वैसे भी आपके ग्रुप के लिए बहुत ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नवद्वीप धाम, हर एक द्वीप जो है नवद्वीप का वो नवदा भक्ति का एक एक अंग का प्रतिनिधि है। तो आपने सारे द्वीप को घूमकर आप कहाँ पर आ गए हैं, आत्मनिवेदन के द्वीप पर आप पहुँच गए। ये द्वीप जो है जिसको अंतरद्वीप कहते हैं, इसे ये नवदा भक्ति में से अंतिम चरण जो है आत्मनिवेदनम, जिसके बलि महाराज आचार्य हैं, वो आत्मनिवेदनम यहाँ पर प्रकट है। तो एक तरह से अच्छा है आपने पूरी यात्रा की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम वंदनम क्या आगे अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो सब लोग यहाँ पर अभी आखिरी दिन ये तय कर लीजिए कि हम लोगों को अभी यहाँ पर अपना आत्मनिवेदन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे या ना चाहे अगर आपको भगवत धाम जाना है और भगवान की प्रीति को प्राप्त करना है तो आत्मनिवेदन किए बिना तो कोई उपाय नहीं है उसका। और बलि महाराज की याद करके हमें उनको प्रार्थना भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और एक चरम उदाहरण हम सबके लिए स्थापन कर दिया। तो महाराज श्री के मुख से आपने कई दिनों तक विशेष करके इस जगह की लीला सुनी है, कम से कम मेरे ख्याल से 12 घंटे प्रवचन इस जगह की लीला पर हुआ है। तो वो सारी लीलाएं तो यहाँ पर 45 मिनट में बताना मुश्किल है, लेकिन ये जगह जो है ये बहुत ही गुप्त जगह है, एक तरह से कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट गोपनीय कह सकते हैं उसको, क्योंकि द्वापर युग में जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए वत्सपाल लीला के अंतर्गत, और जब उनको उसके बाद पता चला कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, मतलब एक तरह से होश में आए वो सत्य के प्रति, तो उस समय उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, पश्चाताप व्यक्त किया, भगवान का गौरव किया, प्रार्थनाएं व्यक्त की, गिड़गिड़ाए भगवान के चरणों में। लेकिन फिर भी उनका भगवान ने तो उनको एक तरह से माफ़ कर ही दिया, लेकिन एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि इतनी सारी प्रार्थना करने पर भी भगवान उन पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने ब्रज मंडल की दंडवती परिक्रमा की है, पूरी दंडवत प्रणाम, जब ब्रज का आश्रय लिया तो भगवान ने उनको फिर माफ़ कर दिया। लेकिन फिर भी उनका पश्चाताप जो था वो पूरा नहीं हुआ, वहाँ से निकले वो, उधर जगह है शेरगढ़ नाम की, चौमुहा शेरगढ़ से ही ऐसे चार जगह है, परखम से ही चौमुहा और क्या बताया मैंने, से ही परखम चौमुहा और एक जगह और है, ये चार जगह पर ब्रह्मा जी का लीला हुआ था, एक ही लीला। तो वहाँ से निकले वो लेकिन असंतुष्ट रूप में वो दोबारा ब्रज में उतरे, उधर ही पास में वृंदावन में, और वहाँ पर इतना रोए, आठ आँखों से रोए वो, नदियाँ बहाई उन्हें अश्रु पश्चाताप की, और एक विशाल कुंड उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। आज उसका बहुत सुंदर जीर्णोद्धार भी हुआ है कुपेश्वर महादेव के पास में। फिर वहाँ पर थोड़ा सा शांत हो गए, फिर अपने हंस पर बैठकर उड़े ब्रह्मलोक के जाने के लिए, थोड़ा देर चले फिर उतर गए, फिर भी उनका हृदय जो है ना बहुत दुखी था। उनको ये विचार मन में आ रहा था कि क्योंकि मैं ब्रह्मा के पद पर हूँ इसलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ा, ब्रह्मा के पद में इतना अधिकार है, इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतना प्रभाव है, क्या क्या नहीं कर सकते, पूरे ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है वो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, चार दिमाग दिए भगवान ने उनको, इतने सुपर फाइन सुपरलेटिव इंटेलिजेंस दिया है उनको। उन्होंने सोचा कि इसकी वजह से मुझे गर्व हो गया, घमंड आ गया, और उसकी वजह से मैंने इतनी बड़ी गुस्सा की यानी डेयरिंग किया कि मैं भगवान को भी परीक्षा ले सकूँ। मतलब तब मैं जानता नहीं था मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए गया मैं, केवल इस पद की वजह से, इस पद के अहंकार की वजह से। तो दोबारा क्यों उतरे वो? क्योंकि उनको एक गारंटी चाहिए थी कि मैं दोबारा ब्रह्मा नहीं बनूँगा, दोबारा ये अधिकार प्राप्त नहीं करूँगा, दोबारा मुझे पद का घमंड ना हो, ऐसा कोई स्थिति ना हो, ऐसी कोई अवस्था ही ना हो जिससे मुझे कोई अहंकार कभी पैदा हो। तो उन्होंने उस जगह पर बैठकर बहुत कड़ी तपस्या की। देखो दुनिया में सब लोग तपस्या करते हैं, हर व्यक्ति तपस्या करता है, कोई त्याग करता है, कोई नियम पालन करता है, कोई व्रत करता है, एक स्थिति से उसके ऊपर वाली स्थिति में जाने के लिए करता है। लेकिन पूरे इतिहास में ऐसे दो तीन ही व्रत किए हैं किसने, जो ऊंचे पद से नीचे आने के लिए किया गया। उद्धव जी ने तपस्या किया है, वो क्या इतने भगवान के नजदीक थे वो, लेकिन त्रिणकाबत्ता भगवान से दूर ब्रज में बनने के लिए उन्होंने तपस्या किया है। ब्रह्मा जी ने भी तपस्या किया है, पहले 120,000 साल पहले सत्ययुग के पहले दिव्य युग के पहले सत्ययुग में 120,000 साल तपस्या किया, और क्या बने वो? पत्थर बने, परसाने में जाकर ब्रह्मगिरी ब्रह्माचल बने वो। ब्रह्मा जी के पोजीशन से एकदम क्या कहते हैं उसको, अचेतन रूप में उन्होंने अपने आप को रूपांतरित किया। तो यहाँ पर भी तपस्या कर रहे हैं, क्यों तपस्या कर रहे हैं? मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, ऐसा जन्म देना चाहिए आपको भगवान अगले जन्म में कि मैं कहीं का भी नहीं रहूं, ना जन्म से बड़ा हूं, ना कुल से बड़ा हूं, ना विद्या से, ना पद से, ना अधिकार से, ना किसी से, कोई भी चीज जिससे गर्व हो ऐसा हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ऐसे भाव में यहां बैठकर तपस्या किया। इसलिए हमारे लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे नम्र होकर अपना सारे जितने भी हमारे उपाधियां हैं वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम होकर कैसे न्यून भाव में, नम्र भाव में तपस्या करनी चाहिए, उसका उदाहरण ब्रह्मा जी ने इस जगह पर स्थापन किया है। क्योंकि वो जगह ये जगह थी जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या किया है। और इस तपस्या के फल के स्वरूप उनको द्वापर युग में, जब तक कलयुग आया नहीं, अब तक गौरांग महाप्रभु का अवतरण होने का समय भी नहीं आया है, अभी तो 600 साल बाकी है, क्योंकि उसके बाद तो कम से कम 100 साल भगवान ने लीला किया है, 112 साल, उसके बाद 500 साल के बाद गौरांग महाप्रभु आए, कम से कम 650 साल पहले ही इस जगह पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया उनको। उनका सुंदर रूप देखकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए, लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य से तपस्या किया तो उसको नहीं भूले, बार बार बोलते रहे मैं ये आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि अगली बार ब्रह्मा नहीं बनूँ, या कोई ऐसा पद नहीं प्राप्त करूँ, कोई ऐसा नहीं करूँ, केवल आपका एक न्यून सेवक बनकर रहूँ और आपकी सेवा में रहूँ बस। तो भगवान ने कहा यस, आपका जब मैं इस रूप में आऊँगा तो यवन कुल में जन्म होगा, तो वैसे ही आपका ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बाद में यवन और म्लेच्छ और चांडाल आते हैं, तो कोई सम्मान की बात ही नहीं है वैदिक वर्ण लोगों से, और आप मेरे परम भक्त बन के रहोगे। आपने कल सुनी कथा, आप हरिदास ठाकुर के रूप में आओगे और 300,000 नाम का जप करोगे और नामाचार्य के रूप में आप प्रसिद्ध हो जाओगे, ऐसा वरदान दिया। जब भगवान से आश्वासन मिला कि मैं तुच्छ बनकर जन्म लूंगा तो शांत हो गए वो, फिर राजहंस में बैठकर चले गए। क्यों चले गए? ऊपर जाकर केवल इस्तीफा देने के लिए गए हो कि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ ब्रह्मा नहीं बनना है, ना कुछ काम करना है। इस्तीफा देकर फिर आए 5.5-6 साल में, और आज की तारीख में वो ब्रह्मा नहीं है जो थे, हरिदास ठाकुर बनकर आए, उन्होंने भगवान के साथ लीला किया और भगवत धाम चले गए, दूसरे ब्रह्मा जी अभी अपना सेवा दे रहे हैं वो। तो ये भाव जो है ये अति उत्कट और गोपनीय भाव है जो इस जगह पर प्रकट हुआ है, इसलिए उसका नाम अंतरद्वीप पड़ा है। और नवद्वीप धाम में ये क्षेत्र जो है उसको अंतरद्वीप कहा गया है। और इसमें ये केंद्र बिंदु है उसका, इसको महायोग पीठ कहा गया है। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है अंतरद्वीप में, एक करीब करीब एक माइल का इसका डायमीटर है, व्यास होता ना व्यास, तो एक माइल का है ये द्वीप का। और ये द्वीप जो है जहाँ पर हमारा पंडाल पड़ा है ना वहाँ तक एक्सटेंड है। और ये बल्लाल दीर्घ का, आप लोग गए थे ना उधर पृथु कुंड पे बेलपुकुर, वो इस स्थान में इंक्लूड है। फिर वामन पुकुर नाम का एक स्थान है जिसमें ये जगन्नाथ मिश्रा का घर और मंदिर है। फिर श्रीनाथपुरा और गंगानगर, इतनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। लेकिन केंद्र स्थान में ये महाप्रभु जी का जन्म स्थान है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु निमाय ने जन्म लिया। तो वो पूरी लीला तो नहीं बताएंगे आपको, आपने सब सुनी है। लेकिन यही वो वृक्ष है जिसके नीचे श्री गौरांग महाप्रभु ने अवतार लिया। और क्योंकि निमाय नीम के पेड़ के नीचे अवतार लिया, उसका नाम निमाय रखा गया। नाना जी ने उनका नाम विश्वम्भर रखा, क्योंकि आगे जाकर विश्व की रक्षा करेंगे, विश्व का पालन करेंगे, ऐसे अनेक नाम लिखे गए। ये वो जगह है, अभी कोई सैलियंट पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर दिन रात हरिनाम कीर्तन हुआ करता था। क्योंकि हमारे गौरांग महाप्रभु जब जन्म लिया तभी तो बहुत देर तक जन्म नहीं लिया उन्होंने, सब परेशान हो गए, 9 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 13 महीने हो गए, क्या हो गए, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, परेशान हो गए सब लोग। नीलम्बर चक्रवर्ती ने कहा कि ये जो जीव है, मतलब जो परम भगवान के रूप में यहाँ पर निवास ले रहे हैं आपके गर्भ में, एक ऐसे क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिससे उस क्षण से ही वो अपने जीवन का जो मिशन है वो उस क्षण से ही प्रकट करें, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो वो चंद्र ग्रहण का दिन था, उस समय जितने भी ब्राह्मण हैं, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, यवन है, सब लोग कोई मजाक में, कोई टीजिंग मूड में, कोई हंसी मजाक, कोई टीका, हर भाव में सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। सारे लोग जो पहले कुत्ता बिल्ली का शादी करते थे वो भी गंगा नदी में अपने आप को डुबा कर गोविंद का नाम ले रहे थे। पूरा वातावरण जो है हरी हरी,
हरी, हरी।
इससे गूंज रहा था। और ऐसे पवित्र समय पर जब पूरा विश्व जो है चंद्र ग्रहण के समय पर पूरा विश्व भगवान के नाम के चिंतन में मग्न था, उस दिव्य अवसर पर श्री निमाय पंडित ने, गौरांग महाप्रभु ने यहाँ पर अवतार लिया। उसके बाद में वो बार बार रोते थे, बार बार रोते थे, बार बार रोते थे। और सखियाँ जो थी यहाँ की सची माता की, वो बार बार आकर यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब तक ये बोलते थे तब तक शांत रहते थे, जब शांत हो गए इसलिए बोलना बंद किया, फिर दोबारा रोते थे। कई कारणों से रोते थे, ये बताने के लिए कि जीवन का परम उद्देश्य सतत भगवान के नाम का कीर्तन करना है। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, भगवान का दृढ़ व्रत से निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए बार बार उन्होंने ये लीला किया। हम लोगों को भी ये मन में ठान लेना चाहिए कि जप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो केवल 16 माला के लिए नहीं करना चाहिए। 16 माला तो मिनिमम आपका रेगुलेशन है, आपको करना ही है। लेकिन नियम क्या बताया है, आई विल चैंट मिनिमम 16 राउंड्स, नॉट मैक्सिमम 16 राउंड्स। अरे बाप रे, ये तो पहले बताया नहीं था, वो समझ में नहीं आया उस टाइम पे, ध्यान में नहीं आया उसको, इतना एक्साइटमेंट था दीक्षा में, ये पॉइंट तो समझ में नहीं आया कि मिनिमम 16 राउंड्स। लेकिन आचार्य बताते हैं कि केवल नियम के लिए भगवान का नाम नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम प्रेम से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते काम करते हुए जो भी आप कर रहे हो, खाना बना रहे हो, जा रहे हो ऑफिस, जा रहे हो आ रहे हो, काम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन के बैकग्राउंड में भगवान के नाम का जप जो है वो होते रहना चाहिए। अभी आपको समझ में आया कि अरे ये तो बहुत स्थिति बहुत दूर है, अरे भगवान के नाम की जप की माला हाथ में है और जप करने का समय है तभी भी भगवान का चिंतन नहीं होता है। ये तो भगवान का जब समय सोलह माला होने के बाद की बात कर रहे हैं, और जब हम दिन भर जब तक जागृत अवस्था है तब तक भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे, मतलब भगवान के नाम का चिंतन करते रहेंगे, वो धुन मन में चलती रहेगी, भगवान के नाम का स्मरण चलता रहेगा, तो उसके बाद में निद्रा में भी भगवान का नाम का चिंतन हो सकता है। इट इज पॉसिबल, निद्रा में भी भगवान का चिंतन हो सकता है। और जब ऐसा हमारा चिंतन होगा भगवान के नाम का, तो भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ ही है। इसलिए देखिए स्थिति तो बहुत ऊंची है, परम श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन इच्छा करने में कोई नुकसान नहीं ना। आप अंतर्द्वीप स्थान में बैठे हैं, आत्मनिवेदन के स्थान में बैठे हैं, गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान में बैठे हैं, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, ये भगवान हम आपका सततम कीर्तन तो माम दृढ़ व्रत से करना चाहते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचना चाहते हैं, वरना इस मनुष्य जीवन का लाभ ही क्या है। दिन रात इसी के लिए मैं मेरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, बाकी सारे कर्तव्य तो है वो बाद में साइड में चलते रहेंगे, होते रहेंगे, कर्म के अनुसार संचित के अनुसार होता रहेगा, लेकिन मैं आप प्रयत्न पूर्वक इच्छा पूर्वक आपका नाम का चिंतन सतत करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना तो आप कर सकते हैं और जरूर कीजिए, इसी के लिए भगवान ने यहाँ पर ये लीला किया। और एक सुंदर लीला मुझे याद आ रही है कि यहाँ पर जब जन्म हुआ ना तो जन्मोत्सव मनाया गया, जगन्नाथ मिथिला उत्सव। उस उत्सव में इतने लोग आए, जितने भी लोग बंगाल में सब आ गए, नवद्वीप को आए आए, शांतिपुर से वो आए, हाँ हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य, उनको वहाँ पर सिग्नल मिला, आ गए भगवान आ गए, वहाँ से नाचते हाँचते आ गए वो। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य की पत्नी और गिफ्ट लेकर वहाँ से आए, हरिदास ठाकुर नाचते नाचते आए, लेकिन सारे देवता भी आए, क्योंकि देवताओं को वहाँ पर भगवान के बाल रूप का दर्शन नहीं होता है। तो जब गौरांग महाप्रभु के रूप में बाल रूप में आए तो सारे देवता भेष बदल कर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर भेंट लेकर आए। और लिखा है कि सच्ची माता सब जब ही सभी लोगों को देख रही थी ना, सब लोग आकर आकर भगवान निमाई को गिफ्ट दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, क्या क्या पवित्र वस्तुएं दे रहे थे, सबको निहार रही थी वो। लेकिन समझो आपके घर में शादी है तो आप कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो आप उसको पूछ नहीं सकते हैं कि आप कौन हो, कौन से साइड से आए हो, कार्ड है क्या आपके पास ऐसा पूछ नहीं सकते आप, क्योंकि वो ऐसा पवित्र समय है, अमंगल समय है, आनंद का समय है, शुभ घड़ी है, तो आप किसी को पूछेंगे नहीं आप क्यों आए, आपके पास कूपन है क्या प्रसाद का, उधर क्यों गए आप, ऐसा बोल नहीं सकते। तो उनको सच्ची माता को पता चल रहा था कि इसमें अनेक ऐसे लोग हैं जो दिव्य तेज वाले हैं, जो हमारी पहचान के नहीं हैं लेकिन आए हुए हैं, लेकिन वो विचारी करती रही कौन होंगे कौन होंगे कौन होंगे, और वो आए आशीर्वाद देके चले भी गए, फिर भी वो सोचती रही कौन थे वो कौन थे वो कौन थे वो। यही अनुभव यशोदा माता को भी हुआ था जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था। ये हर एक समय होता है, कौशल्या जी को भी यही अनुभव हुआ था जब राम जी का जन्म हुआ था, क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं ना तो दिव्य दिव्य अलग लोगों से लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और वो ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मैं ब्रह्मा हूँ मैं शिव जी हूँ, वो आकर चले जाते हैं दर्शन करके। ऐसे ही एक बार सच्ची माता अपने बालक को लेकर यहाँ बैठी थी गोद में लेकर, तो उसको एक दिव्य दर्शन हुआ, सारे देवता प्रकट हो गए उसके सामने दिव्य तेज के साथ, कोई चार मुख वाला कोई पांच मुख वाला, और उसमें से एक ने आकर उसकी गोद में से बालक को छीन लिया, एक प्रकार से छीन लिया कहो प्रेम से लिया कहो, लेकिन उसको तो इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन ले लिया उन्होंने, लेकर उस कोर्टयार्ड में आंगन में ऐसा एक वेदी सजाया और वेदी में उनको सुलाया, अच्छी तरह से आसन लेकर ऐसे बालक को लिटा दिया एक पात्र में, और दिव्य जल से तीर्थ तीर्थ जल से और पंचामृत से उनका अभिषेक करना शुरू किया। और वो सच्ची माता देख रही है, और वो जो है वो अभिषेक जो है ना उनको जल भी ऐसा आंगन में ऐसा फैल रहा है। तो कुछ देर के बाद उसको रहा नहीं गया, उन्हें स्वामी स्वामी उनको पतिदेव को पुकारा, आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं ये लोग कौन है, तो निमाई का अभिषेक कर रहे हैं, आइए देखिए आंगन में चरणामृत गिर रहा है। जगन्नाथ मिश्र भाग भाग के आए, जब भाग के आए तो देखा क्या वहां पर कोई नहीं है, ना कोई जमीन पर चरणामृत है, ना कोई पात्र है, ना कोई वेदी है, ना चरणामृत का अभिषेक करने का स्थान है, कुछ भी नहीं है, और केवल ऐसे ही निमाई पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर गोद में लेते हैं, कौन है यहाँ पर, कोई नहीं है। नहीं नहीं मैंने देखा अभी, बहुत दिव्य प्रकाश वाले लोग आए थे, अभिषेक कर रहे थे। ऐसे कई अद्भुत अनुभव इस जगह पर सच्ची माता को जगन्नाथ मिश्र को हुए। तो मैं आपको ऐसे कुछ लीलाओं के बारे में बताऊंगा जो वहां पर अभी तक वर्णन नहीं हो पाया, क्योंकि ये महाप्रभु जी के संन्यास लेने के बाद की लीलाएं हैं। उसके पहले मैं यहाँ के दर्शन का परिचय कराऊंगा आपको। बीच में जो मंदिर है वो जगन्नाथ विश्वम्भर यानी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और उनको दो पत्नियां लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया दोनों का दर्शन है। ये स्थान जो है ना वो नित्यानंद प्रभु के भविष्यवाणी के अनुसार महाप्रभु के जाने के पश्चात गंगा जी के प्रवाह में लुप्त हो गया था, 100 वर्ष तक लुप्त रहा, मतलब अंतर्द्वीप था ही नहीं, अंतर्द्वीप गायब हो गया। उसके बाद में भगवान की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भविष्यवाणी के अनुसार ये पुनः प्रकट होने का समय आया। तब जाकर ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत प्रयास करके एकदम साइंटिफिकली इस जगह का स्थान निश्चित करके जगन्नाथ बाबा जी को लेके आए और ये स्थान का जो महाप्रभु जी का जन्म स्थान है इसको पुनः स्थापित किया उन्होंने और ये मंदिर बनाया। और जब मंदिर बनाया तो भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, बड़े मजिस्ट्रेट थे। उस समय कृष्णनगर में उनका ट्रांसफर हुआ था, गोद्रूम में रहते थे, बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति थे। पहले जगन्नाथपुरी मंदिर के कस्टोडियन रह चुके थे वो, इतने बड़े बड़े पद उन्होंने भूषित किए थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी उतना सम्मान था उनका, एक संत के रूप में नवद्वीप में उनका सम्मान था, हर प्रकार से वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे। चाहते थे वो गवर्नमेंट से सैंक्शन करके इसको बनवा लेते मंदिर को, इतनी पावर थी उसके अंदर उनके अंदर। लेकिन घर घर जाकर एक रुपए का कॉइन, डबू कॉइन, डबू पैसा वो उन्होंने इकट्ठा किया, एक एक, एक 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 पैसे का कॉइन इकट्ठा किया। ये भाव से किया कि हर एक नवद्वीप के वासी को इस मंदिर को बनाने का भाग्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अंतर्द्वीप है, ये योगपीठ है, महाप्रभु का जन्म स्थान है, यहाँ पर मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त होना ये जीवन की परम प्राप्ति है। इसलिए उन्होंने हर एक व्यक्ति को एक एक रुपए देकर लेकर इस मंदिर का निर्माण किया। 1906 में ये मंदिर पूरा हुआ पुनर्निर्माण वाला। फिर उसके बाद में 1937 में 1937 उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने यहाँ पर उसका पुनर्जीर्णोद्धार किया। और उस समय पर जो दो बाजू के विग्रह हैं, इस तरह पंचतत्व है, इस तरह पे राधा माधव, आई थिंक राधा माधव है, राधा कृष्ण के विग्रह हैं, गौरांग महाप्रभु के साथ हैं राधा माधव लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पंचतत्व, ये दो विग्रह ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसके बाजू में स्थापित किए, स्थापन किए सॉरी। और साथ साथ ठाकुर भक्ति विनोद का गेट के पास मंदिर भी स्थापन किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण किया है। ऐसे आप आएंगे तो ये नीम का पेड़ है जहाँ पर एक्चुअल महाप्रभु गौरांग का जन्म स्थान है। ये कल्प वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है, वो जो वृक्ष था उसी के बालक के रूप में ये वृक्ष यहाँ पर विराजमान है। उसके पीछे जाएंगे तो दो शिवजी की मंदिर है, दो शिवजी हैं वहाँ पर। एक है क्षेत्रपाल शिव जो इस धाम का अंतर्द्वीप का रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करते हैं, धामवासी की रक्षा करते हैं, यात्रियों की रक्षा करते हैं और क्षेत्र की भी रक्षा करते हैं। और दूसरे गोपेश्वर शिव, गोपेश्वर महादेव, वो यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, आप इच्छा करेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे उसके अनुसार आपको भगवान की सेवा में प्रवेश देंगे। ही एडमिट्स यू इन द सर्विस ऑफ गौरांगा। तो ज़रूर आप उनसे जाके प्रार्थना करना कि हमको गौरांग महाप्रभु की सेवा में आप लगाइए। उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी नरसिंह का विग्रह है और गौर गदाधर का विग्रह भी है। उसकी छोटी सी कहानी ऐसी है कि इस जगह पर यवनों का आक्रमण हुआ था एक समय, तब यहाँ पर ये मूर्ति स्थापन की गई थी नरसिंह भगवान की। इस भाव से कि जहाँ नरसिंह भगवान को स्थापन किया जाता है वहाँ पर फिर किसी यवन का राक्षस का आतंक नहीं होता है, इस भाव से यहाँ पर वो मूर्ति बनाई गई, स्थापन की गई। इतनी सुंदर, इतनी क्या कहें आपको, कैसे कहें, सब विग्रह तो जागृति होते हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल विग्रह हैं वो। आपको खड़े रहेंगे उसके सामने तो आपको उसका अंदाज आएगा कि कितनी शक्ति है उसमें, भगवान के विग्रह में, जो आप लोगों को हमको भी उसका प्रभाव और लाभ दे सकती है। तो उसी भाव से जब हमारे इस्कॉन मंदिर में जब यवनों का आक्रमण हुआ था तो समय प्रभुपाद के शिष्यों ने मिलकर यही चर्चा किया था कि यहाँ पर भी उसी भाव से नरसिंह भगवान का विग्रह होना चाहिए। और फिर वो आज आपके सामने जो नरसिंह भगवान विराजमान है, वो पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन में ब्रह्मा जी के पास भी ऐसा मंदिर नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, हमको लगेगा क्या आप लोग इस्कॉन में बैठे इसलिए इस्कॉन का बढ़ोतरी कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो ही बदल सकते हैं। अगर ब्रह्मा कहेंगे मैं ब्रह्मा हूँ तो थोड़ी गर्व कर रहे हैं, तो सच बता रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, आई एम ब्रह्मा। अगर मैं कहूँगा मैं डॉक्टर हूँ तो मैं थोड़ी गर्व से बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, क्या करेंगे, आई हैपन टू बी डॉक्टर। तो वैसे स्थापति ने बताया कि ऐसा विग्रह तो बन ही सकता नहीं, आदेश भी नहीं बनाने के लिए, तो वो वहाँ पर बनाया गया क्योंकि सपना दिया उनके गुरु ने इस्कॉन के लिए बनाओ आप, तो ऐसा अद्भुत विग्रह तैयार हो गया। तो ये सब जो दिव्य चीज़ें हैं ना, ये संतों की कृपा है, बिना वैष्णवों के संतों की कृपा से ऐसे दिव्य कार्य नहीं हो सकते हैं, दिव्य चीज़ें प्रकट नहीं हो सकती हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम इसके साक्षी हैं, हमारे होते हुए ये सब चीज़ें हम दर्शन कर रहे हैं, और ये हमारा भाग्य है कि हमारे होते हुए यहाँ पर अद्भुत मंदिर का निर्माण भी हो रहा है इसी द्वीप में। लेकिन वो जो द्वीप है वो रुद्र द्वीप है, जहाँ पर हमारा आज का राधा माधव का मंदिर है और जहाँ पर TOVP बन रहा है वो रुद्र द्वीप में आता है, और हम रुद्र द्वीप में गए थे ना, वो उससे कनेक्टेड है, पूरा एक ही ज़मीन पर कनेक्टेड है। और इसके पीछे का हिस्सा जो है वो जहाँ पंडाल है वो अंतरद्वीप है, और यहाँ चैतन्य मठ में जो गोवर्धन पर्वत है वो पर्वत का क्षेत्र वहाँ से लेकर हमारे पंडाल तक विस्तारित हुआ है, तो हमारा पंडाल जो है वो गोवर्धन क्षेत्र में है एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे जीवित होते हुए अद्भुत मंदिर का निर्माण और प्रकटीकरण हो रहा है, ये कोई साधारण योगायोग की बात नहीं है, ये दिव्य भगवान की इच्छा है, हमारा परम सौभाग्य है। और जिस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने एक एक रुपया एक एक पैसा लेकर यहाँ मंदिर का निर्माण किया है, उसी भाव से हमको भी मौका दिया जा रहा है। ये तो हम कहेंगे कि अरे काश मैं उस समय होता जिस समय ये मंदिर निर्माण होता, काश मैं उस समय होता तो मेरे जेब से भी कुछ मैं खर्च करके मंदिर का निर्माण के लिए कुछ करता। हाँ, काश मैं उस समय होता जब ठाकुर भक्ति विनोद जी एक एक रुपया मांगने के लिए घर आ रहे थे और मैं भी मेरा एक रुपया दे देता। कभी कभी हम लोग जो नामुमकिन है उसकी इच्छा करते रहते हैं, लेकिन जो मुमकिन है वो जब समय आता है तो पीछे पीछे हटते हैं। अरे क्या बार बार आ रहे हैं, दिया ना एक बार, अभी बार बार क्या है। ये हमारा परम भाग्य है कि हमको बार बार पुकारा जा रहा है मौका देने के लिए। हाँ, विश्व में सभी लोगों का ये भाग्य हो सकता है कि ये अद्भुत मंदिर के निर्माण में सहायता दे सकते हैं, लेकिन पूछा किसको जा रहा है, भक्तों को पूछा जा रहा है। जो भक्त मंदिर निर्माण करने वाले लोग हैं ना, मेरे अच्छे परिचित हैं, वो उन्होंने कहा कि इतने साल के प्रयास के बाद में हमारी ये अनुभूति है कि अद्भुत मंदिर केवल भक्तों के पैसे से ही बनेगा। नित्यानंद प्रभु को और गौरांग महाप्रभु को कर्मियों का पापियों का पैसा नहीं चाहिए। जो भक्त लोग चार नियम पालन करते हैं, पवित्र जीवन का आचरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान से प्रेम करने का कम से कम प्रयास कर रहे हैं, उनका ही पैसा उनको चाहिए जिससे उनको मंदिर बनवाना है, और बनेगा भी वो भगवान के भक्तों के पैसे से ही बनेगा, क्योंकि भक्त भगवान के भक्तों के पैसे के अंदर एक पवित्रता और शुद्धि होती है, पवित्र होता है, इसके वजह से भगवान का जो पर्पज है वो फुलफिल हो सकता है। इसलिए भगवान भी चरण अपने चरण के रूप में जगह जगह जाकर किससे मिल रहे हैं, भक्तों को मिल रहे हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु जा जाकर विदेश विदेश में भक्तों के सामने हाथ पसार रहे हैं और कह रहे हैं ये दिव्य मंदिर तो होने ही वाला है, आपके देने से ना देने से रुकने वाला नहीं है, लेकिन आपके देने से आपको ये भाग्य मिलेगा। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो हो गया है, आपका विजय भी निश्चित है, कौरव मर भी गए, लेकिन आपको धनुष उठाकर चलाना है ताकि श्रेय आपको मिलेगा। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, चाहे तिनका हो, मराठी में कहते ना फूल ना फुलाची पाकड़ी, चाहे कुछ भी हो जो हमारे बस में हमको देते रहना चाहिए, क्योंकि बाकी ये जीवन में पैसा कब आएगा कब जाएगा, कब छीन लिया जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, कब जल जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। धन जो है ना वो भगवान के सिवा चंचला होता है, वो कभी टिकता नहीं हमारे पास। भगवान के चरणों में रहेगा, भगवान के सेवा में रहेगा तो लक्ष्मी देवी स्थिर हो जाती है। तो इस बड़े दिव्य परमार्थ में एक स्वार्थ भी छिपा हुआ है, जब हमारा धन भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो हमारे पास धन भी बना रहेगा ताकि आगे का जीवन भी ठीक चलता रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ परमार्थ इज अ बेस्ट स्वार्थ, अगर आप परम स्वार्थी हो तो आप परमार्थी बन जाओ, आपका स्वार्थ परफेक्टली पूरा हो जाएगा। तो कम से कम स्वार्थ के लिए क्यों ना हो, हमको ये धन का परमार्थ करना चाहिए। हरे कृष्णा। अद्भुत मंदिर की, नित्यानंद प्रभु की। तो इस तरह से ये मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। लक्ष्मी नरसिंह भगवान का दर्शन कीजिए आप। यहाँ पर एक झोपड़ी है जिसमें स्वयं सती माता, जगन्नाथ मिश्रा और बालक निमाई विराजमान हैं। वो स्वयं नंद महाराज के अवतार हैं, सची माता देवी यशोदा के अवतार हैं। और जैसे हर एक द्वीप के अंदर ब्रज की कोई दिव्य स्थान प्रकट है, तो यहाँ पर क्या प्रकट है? नेचुरली एकदम लॉजिकली क्या प्रकट है? गोकुल यहाँ पर प्रकट है, यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ पर गोकुल प्रकट है, गोकुल महावन पूरा यहाँ पर प्रकट है। और हर एक द्वीप में एक एक सखी का कुंज है, और पूरा जो नवद्वीप मंडल है वो एक कमल की तरह है। जो बीच का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको इंग्लिश में वर्ल कहते हैं। वर्ल बीच की जगह होती है, और फिर पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये पंखुड़ियाँ कैसी हैं? इसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं और बीच का हिस्सा 9वां है। हम लोग बीच के हिस्से में बैठे हैं अंतरद्वीप में, तो नेचुरली ये किसका कुंज होना चाहिए? लॉजिकली राधा रानी का कुंज होना चाहिए, और वो है भी राधा रानी का। हाँ, तो राधा रानी का ये निजी कुंज है जहाँ पर अंतरद्वीप प्रकट है। इस मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो ठाकुर भक्ति विनोद उसका खनन कर रहे थे। खनन में, तो खनन में उनको एक चतुर्भुज पत्थर की विष्णु की मूर्ति मिली, और कोई बड़े बड़े ज्ञानी थे वो, साक्षात्कारी भक्त थे, तो उनको पता चला कि ये अधोक्षज विष्णु की मूर्ति है जो स्वयं श्री जगन्नाथ मिश्रा जिसका पूजन किया करते थे। और उस पूजन में स्वयं निमाई अपने पिताजी की सहायता भी करते थे, और जब पिताजी चले गए तो स्वयं गौरांग महाप्रभु उस अधोक्षज महाप्रभु की रोज पूजा करते थे। ऐसा दिव्य विग्रह जो है ठाकुर भक्ति विनोद की असीम कृपा से प्रकट हुआ, और वो आज बीच वाले जो मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, महाप्रभु चैतन्य विराजमान हैं, उनके नीचे ये चतुर्भुजा वाली कुछ 12 इंच की मूर्ति वहाँ पर विराजमान है, एकदम शाइनिंग काले पत्थर में है। जरूर उसको आप प्रार्थना करना, क्योंकि यही अधोक्षज विष्णु की मूर्ति नंदगांव में भी, नंद भवन में है, जो नंद महाराज नियमित रूप से उस विष्णु की पूजा करते थे, अपने बालक का जो शुभ शुभ चिंतन करते थे और सुरक्षा मांगते थे उनसे। नरसिंह भगवान का विग्रह भी नंदगांव में है, और हर एक संकट के बाद में नरसिंह भगवान की नंद बाबा पूजा करते थे अपने बालक कृष्ण को बचाने के लिए या सुरक्षा करने के लिए। तो ये सिमिलरिटी है गौर लीला और कृष्ण लीला में। तो और एक सुंदर बात है जो मैं आपको एक्चुअली पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इतना सुंदर वर्णन है। उसके पहले जब महाप्रभु जी का जन्म हुआ, उसके बाद महाप्रभु जी ने बहुत साल यहाँ पर लीला किया, और विश्वरूप जो थे उनके बड़े भाई थे, तो यही बाजू में आगे जाकर अद्वैत भवन है, वहाँ पर जाकर भागवत सुनते थे, और उनके संग से प्रेरित होकर और घर में विवाह की बात चल रही है सुनकर विश्वरूप चले गए और शंकरारण्य स्वामी बने। संन्यास लिया उन्होंने, भारत भर भ्रमण किया और पंढरपुर में अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, मतलब महाप्रभु ने संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु नाम ग्रहण किया। उसके बाद विरह इतना हुआ उनका कि जगन्नाथ मिश्रा भी अपना शरीर छोड़ के गोलोक धाम चले गए। यहाँ पर कौन बचे? महाप्रभु की पत्नी, महाप्रभु की माँ सची माता, और 2 महान व्यक्ति यहाँ पर थे जो जगन्नाथ मिश्रा के समय से परमानेंटली यहाँ निवास करते थे। एक थे भगवान के बंसी के अवतार बंसी वदन ठाकुर, और दूसरे थे हमेशा नित्य नम्र भाव से ये सारा परिवार की सेवा करने वाले ईशान ठाकुर। जल ला के देना, कुएं से निकालना, गंगा से लाना, सब्जी काटना, ये करना वो करना, जो भी सालादी पोछा साफ सफाई करना, जो भी पड़ेगा वो काम करने के लिए एकदम शरणागत भाव में ईशान ठाकुर, बट बहुत महान भक्त थे। तो इस जगह पर यही जगह है जिस जगह से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए निकले। यहाँ से उस रात को जब श्रीधर ने उनको एक पम्पकिन ला के दिया, कद्दू उनके छत पर हुआ किसी ने दूध दिया, किसी ने मिठाई दिया, किसी ने क्या कहते हैं उसको मेवा दिया, तो खीर बनाई गई इस घर में उस समय संक्रांति के पहली रात को। भगवान ने उसका शालिग्राम शिला को अर्पण करके उसका प्रसाद लिया। और इसी जगह पर गौरांग महाप्रभु ने अपने पत्नी से वो उत्कट संवाद किया। और पत्नी ने क्या कहा, ये जगह बहुत ही उत्कट जगह है, क्योंकि पत्नी ने क्या कहा कि मैं आपके आने वाले वेद से बहुत व्याकुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी जो भी दिव्य इच्छा है उसकी रूप बाधा के रूप में मैं नहीं आना चाहती। आई विल नॉट बिकम एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मेरे लिए दर्दनाक होगी लेकिन आपकी इच्छा मेरी इच्छा एक है, मैं मेरी इच्छा आपकी इच्छा से मिलाना चाहती हूँ, एक करना चाहती हूँ। तब जाकर गौरांग महाप्रभु ने अपना ही विग्रह प्रकट किया और इसी स्थान में विष्णुप्रिया को दिया और कहा कि इस विग्रह के रूप में मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा और आप जो भी इसको भोग लगाएंगे वो मैं ग्रहण करने के लिए व्यक्तिगत रूप में प्रत्यक्ष यहाँ पर आकर ग्रहण करूंगा उसका। जब भी आप भोग लगाएंगे, जो भी करेंगे आप, तब मैं आपके साथ रहूंगा। पूरे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में इसके बाद जाकर विष्णुप्रिया का कोई वर्णन नहीं है, कोई उल्लेख भी नहीं है। लेकिन सारा गौरांग महाप्रभु का कृपा जो है विष्णुप्रिया के त्याग पर आधारित है, जिनका नाम भी कहीं आगे मेंशन नहीं होता है। लेकिन सारी लीला जितनी भी हुई है वो हुई है क्योंकि विष्णुप्रिया ने हृदय से भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और अपने जीवन का सर्वस्व, अपने जीवन का सर्वोच्च भाग्य जो है उसका त्याग कर दिया। तो एक तरफ महाप्रभु का त्याग है जो हमारे लिए उन्होंने अपना इतना सुंदर गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, और उसके आगे जाकर गुप्त रूप में विष्णुप्रिया का त्याग है जो जिसे महाप्रभु पर्सनली कभी नहीं मिले उसके बाद में। और इसी जगह पर वो रोज दिन भर भजन किया करती थी, कम से कम 20 घंटे, और एक महामंत्र बोलने के बाद एक चावल का दाना बाजू में रखती थी। दिन भर भी आप जप करेंगे, समझो 20 घंटा जप करेंगे, कितना ग्राम चावल इकट्ठा होगा सोच सकते हैं? 100 ग्राम भी नहीं होगा शायद, आई डोंट नो, कभी ट्राई कर सकते हैं आप। कोई हमारे आनंद वृंदावन प्रभु वो कभी हरिदास ठाकुर के तिरुभाव आविर्भाव दिवस पर 192 माला का प्रोग्राम बनाते हैं, उस दिन जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको चावल लेकर बैठना और एक एक मंत्र होने के बाद में एक एक चावल साइड में करना और 192 माला के बाद देखना कितना चावल इकट्ठा हो गया। उतने चावल को वो पका कर गौरांग महाप्रभु के विग्रह को अर्पण करती थी, उसी को खाती थी। 16 साल की उम्र में वो महाप्रभु छोड़ के चले गए। नित्यानंद प्रभु के प्रेडिक्शन के अनुसार मेरे ख्याल से कुछ 40 साल के बाद में गंगा नदी बह गई इसके ऊपर, अंतर्द्वीप लुप्त हो गया। इसको जानकर ईशान ठाकुर और बंसीवदन ठाकुर ही जानते थे इस बात को, तो सही समय पर उन्होंने विष्णुप्रिया देवी, धामेश्वर गौरांग की मूर्ति और ये घर का सामान जो है शिफ्ट कर दिया कोल द्वीप में। इसलिए विष्णुप्रिया का मंदिर उधर है, लॉजिकली यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन एक समय पर उसको शिफ्ट किया गया। भगवान गौरांग महाप्रभु ने पादुकाएं भी उनको अर्पण की उस समय, जिस समय मूर्ति दिया उन्होंने, तो ये पादुकाएं और मूर्ति दोनों वहां पर अभी विष्णुप्रिया मंदिर कोलद्वीप में विराजमान है। उसके पहले कुछ समय सच्ची माता और विष्णुप्रिया यहाँ पर विराजमान थे और वो मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान थे। तो बंसीवदन ठाकुर जो बंसी के अवतार है वो बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कई ऐसे भजन लिखे हैं जिसमें वो रोते छाती पीट कर रो रहे स्वयं, वो कहते हैं कि मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे सची माता का और विष्णुप्रिया का वियोग जो है वो देखा नहीं जाता, आई कैन नॉट टॉलरेट, लगता है कि मेरे शरीर के 1000 टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ और अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ, मुझे सहन नहीं हो रहा है, क्यों भगवान आप ऐसे कर रहे हो, क्यों उनको छोड़ के चले गए। इनका विरह जो है वो विश्व के कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता, इतना गहरा इनका विरह है। उसके बाद सची माता भी अंतर्धान हो गई और अकेली विष्णुप्रिया रह गई। सोच सकते हैं आप, महाप्रभु संन्यास लेकर तो माता को मिलने के लिए कई जगह मिले, महाराज जी ने बताया सची माता ने उनको गोद में लिया बालक की तरह और पूरा नदी नदी से अश्रुओं से उनको नहलाया उन्होंने, भगवान भी रोए बहुत। तो महाराज कहते कि ऐसा प्रेम होना चाहिए, इस प्रेम के लिए हमको जीना चाहिए, ऐसे प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमको इतना प्रेम करते हैं। तो वो तो मिले उनको लेकिन विष्णुप्रिया को नहीं मिले। एज अ रूल सन्यास लेने के बाद सन्यासी अपनी पत्नी का मुंह देख नहीं सकता, माता को मिल सकता है। तो विष्णु प्रिया ने कितना दर्द अनुभव किया होगा, इतने तीव्र विरह में उन्होंने भगवान का उत्कट संग का अनुभव किया भाव रूप में, वो भी इसी जगह पर। हाँ, जन्म की और बाल लीला का वर्णन तो है ही यहाँ पर, लेकिन यही लीला उस स्थान का भी साक्षी है, उस लीला का भी साक्षी है। तो इसी स्थान पर जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु आए थे और यहीं से उन्होंने जीव गोस्वामी के लिए नवद्वीप परिक्रमा का आरंभ किया। सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे नवद्वीप मंडल का महिमा बताया उनको, बोलते हे जीव, अगर आपकी इच्छा हो तो आपको ये धाम की परिक्रमा करनी चाहिए। जगह जगह पर महाप्रभु की लीला का यहाँ पर भाग्य है। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरते हैं इसी जगह पर और कहते हैं, मेरी ये आपको प्रार्थना है, अगर आप ही धाम दर्शक बनकर मुझे ले जाएंगे और धाम का दर्शन कराएंगे तो मैं आपका बात ऋणी रहूँगा। और नित्यानंद प्रभु ने कहा, सो बी इट, तथास्तु, मैं आपके संग चलूँगा। और स्वयं नित्यानंद प्रभु इन्होंने जीव गोस्वामी को इस नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराई है। तो यहाँ पर जब लेके आए तो सच्ची माता को उन्होंने जीव गोस्वामी का परिचय करा दिया, तो ये जीव है, ये गौरांग महाप्रभु का परम भक्त है। तब उस समय गौरांग महाप्रभु कहाँ थे, तो जगन्नाथपुरी में थे संन्यास लेकर। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर घूम रहे हैं। तो इतना सुंदर परिचय दिया उनका, और परिचय देने के बाद में उन्होंने क्या, जीव गोस्वामी बड़े आनंद विभोर होकर दर्शन करने के लिए आगे चले गए। नित्यानंद प्रभु के साथ में जो परम भाव का प्रतीक थे उनके साथ पीछे पीछे चलने लगे और जगन्नाथ मिश्रा के घर में प्रवेश किया उन्होंने। नित्यानंद प्रभु ने कहा, सच्ची माता, यही वो भाग्यशाली जीव है, जीव गोस्वामी बहुत भाग्यशाली है और महाप्रभु चैतन्य का बहुत प्रिय सेवक है। उस समय जीव गोस्वामी जैसे एक पेड़ तूफान की हवा से जमीन पर गिर जाता है, वैसे सच्ची माता के चरणों पर धाड़ करके गिर गए भाव विभोर होकर, और सच्ची माता के चरणों की धूल में लोटपोट होने लगे। अपनी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, सच्ची माता ने बड़ी दया से उसको आशीर्वाद दिया और फिर सच्ची माता ने विष्णु प्रिया के सहायता से जीव गोस्वामी के लिए बहुत बड़ा प्रसाद का आयोजन किया, इन विग्रहों को अर्पण किया धामेश्वर गौरांग को, और सच्ची माता ने अपने हाथ से विष्णु प्रिया के द्वारा बनाया गया प्रसाद जो है जीव गोस्वामी को खिलाया बड़े प्रेम से। आंखों से आंसू बह रहे थे जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बंसी बदन ठाकुर जो है वो भी उनको बीच बीच में आकर सेवक के रूप में परोस रहे थे। आप सोच सकते हैं, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोलते हैं, इनको जानते हैं आप, ये बंसी बदन ठाकुर हैं, ये साक्षात कृष्ण के मुरली के अवतार हैं, यहाँ पर इतनी निम्न सेवा दे रहे हैं। कैन इमेजिन, उधर हरिवंश गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, तो कितना गौरव है उनका ब्रज में, वही यहाँ पर बंसी के अवतार प्रकट हुए। और ये जो यहाँ का जो लीला है विरह लीला, उसका प्रत्यक्ष अपने आंखों से दर्शन किया उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु को सच्ची माता कहती है, हे प्रिय नित्यानंद, ये तुम्हारी माता का घर है, यानी कि मेरा, बता रही है, आपके बारा वो देखा नहीं गया, आपको दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपके लिए श्री गौरांग महाप्रभु को अपने हाथों से यही भोजन खिलाया है, वही मैं आपको खिला रही हूँ, इसलिए ये प्रसाद जो मैंने बनाया है बड़े प्रेम से आप ग्रहण करना, इसे ग्रहण करने से आपका मन बहुत आनंदी और शांत हो जाएगा। फिर नित्यानंद राय उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया, उसके बाद जीव गोस्वामी ने उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया और बड़े जोर से चिल्लाए वो कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, श्री गौरांग महाप्रभु के घर में अंतरद्वीप में मैंने सच्ची माता के हाथ से आज ये महाप्रसाद ग्रहण किया है। बोलो गौरांग महाप्रभु की। नित्यानंद प्रभु को देखते हुए कि इनका प्रसाद हो गया है, वो यहाँ से आगे चले गए। फिर यहाँ से बंसी बदन ठाकुर भी उनको ज्वाइन हो गए, श्रीवास पंडित भी आए वहाँ पर देखते हुए क्या हो रहा है यहाँ पर, जीव गोस्वामी आए हुए हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं, चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, महाप्रसाद मिल रहा है सची माता का, विष्णु प्रिया देवी का हाथ का बनाया हुआ, तो वो भी आकर कुतूहल से देखते रह गए। और ये भी जीव गोस्वामी का जो उत्कट भाव था यहाँ पर आने के बाद में, वो सोच रहे थे क्यों नहीं मेरा जन्म पहले हुआ, व्हाई आई डिड नॉट टेक बर्थ बिफोर, क्यों मैं इतना दुर्भाग्य हूँ, मैं अगर पहले होता तो यहाँ पर जो श्रीवास आंगन में योगपीठ में सची माता के घर पे जो लीलाएं हुई उसका सबका अवलोकन मैं करता। तो जब वो यहाँ से श्रीवास आंगन में गए तो उनकी इस उत्कट इच्छा के वजह से उनकी आंखों के सामने कुछ क्षण के लिए गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए और नित्यानंद प्रभु उनको ज्वाइन हो गए और दोनों ने संकीर्तन शुरू किया और फिर जीव गोस्वामी बेहोश हो गए। इस तरह से ये किताब आपको सबको लेना चाहिए। ये किताब में नित्यानंद प्रभु ने जो दर्शन प्रत्यक्ष जीव गोस्वामी को कराया है उसका बहुत सुंदर संक्षेप में अति उत्कट भाव में वर्णन है और किस तरह से हमको नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करनी चाहिए, क्या परिणाम हमारे पर होना चाहिए, क्या भाव हमारा होना चाहिए, परफेक्ट परिक्रमा क्या है जो जीव गोस्वामी कैसे की, उसका अनुभव आपको इसमें प्राप्त होगा। और कुछ कुछ हम उनको प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उसी भाव में कभी आने वाले कभी दिन हम भी यहाँ की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आचार्य श्रीनिवास भी आए हैं जो अगली पीढ़ी के बहुत महान आचार्य थे। तो तीन गोस्वामी थे ना, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य अपनी सेवा, अपना जो मिशन उसको आरंभ करने के लिए कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नवद्वीप में आए थे। तो यहाँ पर वो आए, जैसे कहा कि सची माता ने बड़े प्रेम से विष्णुप्रिया के हाथ से भोग बनाकर अपने हाथ से आचार्य श्रीनिवास को खिलाया, क्योंकि तो आचार्य श्रीनिवास जो थे वो गौरांग महाप्रभु का तेज थे स्वयं, ही वॉज एफलजेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इतने तेजस्वी थे वो, आके सची माता के चरणों में गिर गए। सची माता ने बहुत प्यार किया उनको, उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं गौरांग महाप्रभु की सेवा के लिए सेवा करना चाहता हूँ। उस समय तक तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु दोनों अंतर्धान हो चुके थे, वो तो छह गोस्वामी उसमें मतलब उनके जो अनुयायी थे वो सब भी जा चुके थे। उस समय कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीनिवास आचार्य यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर बड़ी कृपा का प्राप्ति किया है। तो लीलाएं तो बहुत सारी है यहाँ पर, लेकिन संक्षेप में वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो समझने वाली बात यह है कि जहाँ भगवान प्रकट होते हैं वो उसका नाम योगपीठ होता है ना, योगपीठ उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। और योगपीठ का और भी एक नाम का अर्थ है कि जहाँ पर मिलने की स्थली होती है, भगवान अपने भक्तों को पार्षदों को मिलते हैं, तो इसी जगह पर भगवान अपने भक्तों को मिलते थे। आगे भी स्थान है श्रीवास आंगन का, वहाँ पर भी भगवान अपने भक्तों से मिलते थे, वहाँ पर संकीर्तन भी किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो गौरकुंड आपके इस साइड में है, जब परिक्रमा पूरी करेंगे तो गौरकुंड आएगा, काफ़ी लोगों ने इसको मिस किया दर्शन में। ये गौरकुंड है, ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि ब्रज में जितने राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये गौरकुंड है। इस गौरकुंड में सची माता अपने बालक निमाई को स्नान किया करते थे, स्नान कराते थे, और इसी गौरकुंड में निमाई बालक रूप में पानी में खेलते भी थे। यहाँ पर सब सखी आकर उनके लिए गाती थी, कभी रोते थे तो हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे, कभी उनको खिलाते थे। इसी जगह पर वो सांप आया था जिसके कॉइल्स में निमाई हिला के लेट गए थे। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएँ यहाँ पर हुई हैं। यही इसी जगह से निमाई पंडित जो है वो अचानक सज धज कर यहाँ से निकले और मुरारी गुप्ता के घर पे गए, जाकर उसके भोजन की थाली में लघु शंका किया उन्होंने, पर बाद में तुरंत आकर अपना गहना उतार दिया, वापस नॉर्मल हो गए। तो ऐसे अनंत चटपटी लीलाओं का यहाँ प्रकट हुआ है, साथ साथ अति उत्कट विप्रलंब भाव जो है वो भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। मामगाछी में जब गौरांग राम प्रभु रामचंद्र वनवास कर रहे थे तो एक दिन वो ऐसे स्माइल दे रहे थे, तो सीता देवी पूछती हैं कि क्यों आप हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कलयुग में मैं यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लेने वाला हूँ, सब लोगों को प्रेम बांटूंगा मैं, हरिनाम संकीर्तन के रूप में, मेरे ही नाम के कीर्तन के रूप में सभी जीवों को परमोच्च आनंद का प्रदान करूंगा मैं यहाँ पर, और तब आप मेरी पत्नी विष्णु प्रिया बनोगी और एक समय पर मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। बोले क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? वो कहते हैं कि एक कारण तो ये होगा कि मुझे जीवों पर दया करने के लिए घर छोड़ के जाकर लोगों पर कृपा करनी होगी, इसे जाऊंगा। या दूसरा कारण ये है कि मेरे भक्ति में और प्रेम में दो प्रकार हैं, एक है मिलन वाली भक्ति और एक है वियोग वाली भक्ति। हाँ, एक है मिलन यानी कि संयोग और एक है वियोग यानी विप्रलंब। और सब लोग जानते नहीं हैं इस रहस्य को, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मिलन से भी करोड़ों गुना अधिक आनंद जो है विरह में होता है। जो गोपियों ने मेरे साथ 11 साल 52 दिन तक जो मिलन का आनंद लिया, उससे करोड़ों गुना आनंद उन्होंने मैं जाने के बाद में लिया, क्योंकि हर एक गोपी के हृदय में मैं भाव रूप में घुस गया। वो भाव के रूप के अंतर्गत मैंने उनको अति उत्कट मेरा संग दिया, जो बाहर के रूप में रोना धोना और विरह विलाप करने के रूप में प्रकट हो रहा था, फिर अंदर से मेरा उत्कट संग वो प्राप्त कर रहे थे। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि विप्रलंब आनंद जो है, विरह का आनंद जो है, वो सर्वोच्च आनंद है, जो मिलन के आनंद से भी कई गुना परे हैं। इस एक को दिखाने के लिए मैं आपको छोड़कर संन्यास लेकर चला जाऊँगा। तो महाप्रभु जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। प्रभु रामचंद्र को भी इतना भाग्य था, राजा बनने वाले थे वो, लेकिन जगत का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने के लिए वो छोड़ के चले गए। ये कंसिस्टेंसी है, देखिए आप, प्रभु रामचंद्र भी छोड़ के चले गए और अयोध्या वासियों को उन्हें दुख के सागर में डुबा कर चले गए। फिर कृष्ण भगवान भी 11 साल 52 दिन वहाँ पर रहे, फिर वो धनुर्युद्ध के कारण वहाँ से निकल गए, 112 साल दूर रहे, सब ब्रजवासियों को उन्होंने दुख के सागर में डुबाया, मतलब आनंद के सागर में डुबाया। नित्यानंद प्रभु जैसे एक चक्र से निकले 12 साल की उम्र में, और ऐसे कि एक चक्र घोस्ट टाउन हो गया, एक भूत बंगला हो गया पूरा, सब लोग सहन ही नहीं कर पाए एक चक्र को। नित्यानंद प्रभु के बिना सोचना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो याद भी उनको बहुत सता रही थी, इसलिए वो छोड़ के ही चले गए। फिर गौरांग महाप्रभु आए, 24 साल मिलन का आनंद दिया, सबको संकीर्तन के आनंद में डुबाया उन्होंने, यहाँ पर इतना विभोर कर दिया आनंद में उनको सबको, सब लोग खाना पीना भी भूल जाते थे, निद्रा भी भूल जाते थे, मानो एक प्रकार का दिव्य यंत्र बन गए थे सब लोग। ना भूख नहीं, ना प्यास है, ना काम वासना है, धन की वासना कुछ नहीं है, दिन रात कीर्तन करते थे पागलों की तरह। वो आनंद देने के बाद अचानक चले गए, सारे नवद्वीपवासी जो है वो दुख के सागर में डूबे। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान सब भक्तों को अपने परम विरह का जो दिव्य आनंद है वो स्वयं भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी देना चाहते हैं। जब भगवान ने राज छोड़ा, भगवान को इतना विरह का अनुभव हुआ राजा रानी का, तो उन्होंने विरह में भगवान का राजा रानी का ध्यान किया, तो ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव किया विरह में कि उनको लगा कि नहीं, ये आनंद की केवल झलक मैंने प्राप्त की है, इस आनंद को मुझे पूरा प्राप्त करना है। तो उन्होंने एक पूरा अवतार प्लान किया, 48 ईयर्स का एक अवतार पूरा अलग से प्लान किया, केवल इस विरह वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए, और उसी को दोनों को बांटने के लिए। आप समझ सकते हैं, यही वो धाम है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। दुर्भाग्य कहिए, सद्भाग्य कहिए, इसका आखिरी दिन है आज, लेकिन यहीं से यात्रा शुरू होती है। जैसे महाराज बताते हैं, यात्रा बिगिंस फ्रॉम हियर, यात्रा तब शुरू होती है जब यात्रा की स्मृति आपके साथ चली जाती है। अगर आप यहाँ पर रहते हुए एकाग्रता के साथ रहे हैं, मन लगाया है, सुनी हुई लीला पर ध्यान केंद्रित किया है, चिंतन किया है, सुनते हुए ध्यान से सुना है, ना सोते हुए सुना है, उत्सुकता से सुना हुआ है, आतुर होकर सुना हुआ है, उसको कथा को हृदय में ग्रहण किया है, तो ही वो स्मृति बनकर आपके साथ जाएगी। और जब वो स्मृति बनकर आपके हृदय से ये धाम लीला के रूप में, दर्शन के रूप में, नाम के रूप में चला जाएगा, तब आपकी सही यात्रा शुरू हो जाएगी। या तो यात्रा की है कि नहीं है, इसका प्रमाण भी आपके साथ जाएगा। इसलिए आपको विनती करता हूँ, आज आखिरी दिन में काफ़ी तीव्रता से प्रार्थना करना, बहुत गहराई से प्रार्थना करना, ताकि ये धाम अपने आँखों से मिले हुए दर्शन के रूप में, अपने कानों से सुने हुए लीला के रूप में, भगवान के नाम का जो जप कीर्तन किया है उसके ध्वनि के रूप में याद बनकर आपके साथ चला जाए। और जब भी आप बंबई में कभी उदास हो जाएंगे या कभी फ्री रहेंगे, हर टाइम उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब फ्री रहेंगे तो उसकी याद करेंगे और उस याद के रूप में, उस स्मृति के रूप में यही निवास करेंगे आप, तब आपकी यात्रा पूरी तरह सफल है। अगर आप बंबई जाकर भी इसी यात्रा के स्मृति में रहेंगे, उसी के चिंतन में रहेंगे, उसी की चर्चा में रहेंगे, तो आप सही रूप में चतुर्थ श्रेणी का धाम निवास कर रहे हैं, फोर्थ डिग्री ऑफ धामवास। एक धामवासी होते हैं, जन्म यहाँ पर लेते हैं, एक धामवासी बाहर जन्म लेते हैं लेकिन यहाँ पर आके बस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4,000 फॉरेनर डिवोटी आकर रह रहे हैं, 4,000। अगर हम भारतीय लोग हैं, हमको भी कहेंगे ना आपको शिफ्ट होना है गौरांग धाम में, तो हम भी 100 बार सोचेंगे जमेगा क्या अपने को, मुंबई का सुख सागर कहाँ मिलेगा इधर, ऐसा आपको लगेगा। तीसरे धामवासी हम लोग हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, टेम्पररी रहते हैं और चले जाते हैं यात्रा करके। और चौथा धामवासी वो है जो निरंतर जहाँ भी रहेगा वो धाम में निवास करता है, चेतना रूप में, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम सब लोगों को वो चतुर्थ श्रेणी का धामवास करने का मौका प्राप्त है और आज उसकी आप पूरी तैयारी कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो गौरांग महाप्रभु को कि आपका धाम हमारे हृदय में बसकर हमारे साथ चले जाए। श्री गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ मिश्रा की, सची माता की, गौर भक्त वृंद की, गौरांग नित्यानंद। जो लोग गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद को बड़े प्रेम से पुकारते हैं उनके पीछे वो दोनों हाथ भर कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति लेकर भागते हैं देने के लिए। नवद्वीप धाम की।